हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारू श्लोक अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 5। तो अगर आपको याद हो श्लोक चौथे में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जब भगवान कृष्ण ऐसा लगता है कि अर्जुन के समवयस्क हैं, उनके हम उम्र हैं, तो फिर वो कैसे समझे कि भगवान ने लाखों साल पहले अर्जुन को ये ज्ञान दिया था। तो इस चीज को भगवान उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं। श्री भगवान वाचा बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन चान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेथत परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे कि भगवान के भी जन्म होते हैं, लेकिन उनका जन्म किस प्रकार से दिव्य होता है, जबकि जीवात्मा अपने जन्म के कारण आपको जो जीवात्मा है उसका जन्म दिव्य नहीं होता है, कर्म के प्रेशर में, कर्म बंधन के अनुसार होता है। यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि अर्जुन के केस में अर्जुन का जन्म कर्मों के कारण नहीं हो रहा है, वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, और जब जब भगवान का जहां जहां भी अवतरण होता है किसी न किसी रूप में अर्जुन भी रहते हैं, लेकिन फिर भी अंतर ये है कि अर्जुन को उन जन्मों का स्मरण नहीं रहता है, लेकिन भगवान को उसका स्मरण रहता है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेक अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो अद्वैत, अद्वैत का अर्थ है उनके नाम रूप गुण लीला जो भी है वो उनसे अभिन्न है, अच्युत, और दूसरा भगवान के अलावा कुछ और जगत में है नहीं, भगवान की शक्तियां हैं, सब जगह प्रसारित हैं। तीसरा अद्वैत का अर्थ यह है कि भगवान भगवान के अलावा और कोई भगवान नहीं है, ठीक है। अच्युत तथा अनादि है, अच्युत का मतलब अपने स्वभाव से कभी वो च्युत नहीं होते, अनादि मतलब उनकी कोई शुरुआत नहीं है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, यानी उनके बहुत सारे स्व अंश हैं, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कोई वस्तु अगर इस जगत में अपने को विस्तारित करती है तो वो क्षीण हो जाती है, लेकिन भगवान इतने अद्भुत हैं कि बहुत सारे अपने विस्तारों को या अपने अवतारों के रूप में विस्तारित होने के बावजूद भी भगवान में कोई शक्ति की क्षीणता नहीं आती। दूसरा, भगवान आदि हैं, आदि पुरुष हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बुढ़े हैं, और इसलिए यहाँ पर शब्द आ रहा है नव यौवनम च, यानी कि नव यौवन रूप में वो रहते हैं। और भगवान का ये जो नव यौवन रूप है, नव युवक का जो रूप है, ये उनका शाश्वत रूप है, यही परम सत्य है। बाकी जितने भी भगवान के रूप हैं वो उनके इस रूप के ऊपर आश्रित हैं, इसे मानना चाहिए। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है उसके हृदय में भगवान स्वतः ही स्फुरित होते रहते हैं। तो ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, रामादिमूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान् यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नृसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। यहाँ पे स्वयं संभववत् परमः पुमान मतलब कि जितने भी अवतार हैं वो अवतार हैं, आध्यात्म जगत से आते हैं, लेकिन उन सब के स्रोत हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिसको श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एता चंसा कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम योग लोके मृडयंती युगे युगे, जितने भी अवतारों का वर्णन पहले किया गया है तीसरे अध्याय श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के, तो उसमें कृष्ण का वर्णन भी है, लेकिन बाद में क्लियर करने के लिए जितने भी अवतार हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण के अंश या कलांश हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूप में प्रकट होते हैं, वे उस वैदुर मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको समझा नहीं जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल वेदों का स्वतंत्र अध्ययन करने मात्र से हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सकते। भगवान अनंत हैं और जब तक हम भक्ति करके उनको प्रसन्न नहीं करते हैं तब तक उनकी कृपा हम पर बरसती नहीं है, और जब तक व्यक्ति की कृपा भगवान पर, भगवान की कृपा व्यक्ति पर होती नहीं है तब तक वो भगवान को नहीं समझ सकता है। तो यही बात इस श्लोक से हमें समझ में आना चाहिए। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। इसमें बृहद भागवतामृत में एक और इस संबंध में अद्भुत बात समझ में आती है कि गोलोक के जो भक्त हैं उनका ही विस्तार वैकुंठ के भक्त के रूप में होता है। जैसे श्रीदामा जो राधारानी के भाई हैं वो अपने आप को गरुड़ जी के रूप में विस्तारित करते हैं। खैर ये मैं इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये एक बात बड़ी विचारणीय है, ये मैंने बृहद भागवतामृत में पढ़ा था। तो जहाँ जहाँ भी भगवान के अवतार होते हैं भगवान के जो उनके नित्य पार्षद हैं वो भी वहाँ पे प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन भी कर्म बंधन के अनुसार नहीं, बल्कि अर्जुन अपने भगवान के संबंध के कारण जहाँ जहाँ भगवान अवतार लेते हैं अर्जुन भी इसी प्रकार से नित्य सखा होने के कारण उनके संग अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है और श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। इसके बारे में श्री बलदेव बुद्ध भूषण बड़ा सुंदर बात बोलते हैं कि भगवान जानबूझकर अपनी लीला संपादन के लिए अर्जुन को भुला देते हैं। अर्जुन के अंदर ये जो अज्ञान है उसको उत्पन्न कर दिया था भगवद्गीता के ज्ञान के संबंधित, तो इसी कारण से अर्जुन याद नहीं रख पा रहे थे। ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे जैसे बद्धात्माओं की तरह अर्जुन को अज्ञान हो गया, ये नहीं हो सकता कभी भी। और यहाँ एक और बात हमें समझ में आती है कि जीवात्मा में और भगवान में कितना अंतर है। करोड़ों करोड़ों वर्षों पहले जो पूर्व जो घटना है वो भगवान को याद रहती है। और इससे एक और चीज़ हमें सीखनी चाहिए कि हम जो भी भक्ति कर रहे हैं हम उसका हिसाब रखें या ना रखें, लेकिन भगवान उसका हिसाब ज़रूर रखते हैं और समय आने पर उसका प्रतिदान करते हैं। कभी कभी लगता है कि भगवान हम जो भक्ति कर रहे हैं क्या भगवान उसको नोट कर रहे हैं, तो आप इस श्लोक का स्मरण कर सकते हैं, बहुनी में वतीताने जन्मानि तव चार्जुन, कि आप हमारे कितने सारे जन्म हो चुके हैं, कितना सारे हमने कार्य किए और किंचित किंचित मात्रा से जो भक्ति इकट्ठी हुई उसको सब भगवान ने याद रखा, उसको जोड़ के रखा और आज इस जन्म में हमें कुछ श्रद्धा है भगवद गीता और भागवतम के ऊपर। तो ये भगवान की अहेतु की कृपा ही है कि हमने अनजाने में भी जो कुछ भक्ति कर दी हो उसको भगवान ने सब जोड़ करके रखा और उसका फल आज हमको इस जीवन में मिल रहा है। तो सोचिए अगर हम इस जन्म में भक्ति करते रहे तो कितना आगे जा के भगवान हमको प्रतिदान करेंगे। एक और चीज इंटरेस्टिंग है कि भगवान को यह भी पता है कि हमने कितने पाप किए हैं। अपने जीवन में कभी सोचिएगा कि जो हमें भक्ति करने का मौका मिला है उसके पहले भी हमने कितने पाप किए हैं, फिर भी भगवान हमको भक्ति में लेके आए हैं। हमारे सारे वो कार्य जो भगवान से विद्रोह करने वाले हैं उनको भी भगवान जानते हैं, फिर भी भगवान हमको मौका दे रहे हैं अपनी भक्ति करने के लिए। तो इसलिए कभी भी भक्ति के पथ को छोड़ना नहीं चाहिए, कितनी भी हमसे गलती हो कुछ भी हो जाए ये दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि मुझे भगवान की भक्ति कभी नहीं त्यागनी। इसी बात से नहीं त्यागनी चाहिए कि पिछले जन्मों में मैंने कितना भगवान को भूलने का प्रयास किया, फिर भी इस जन्म में भगवान ने मुझे भक्तों का संग दिया है और भगवत गीता की वाणी को सुनने का मौका दिया जा रहा है। इसलिए कभी भी भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, जितनी शक्ति है करते रहना चाहिए। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण कर रखने में वह असक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। तब ये दिख सकते हैं, शब्द प्रभुपाद कमेंट कर रहे हैं परम तप के ऊपर कि अर्जुन आप शत्रुओं का दमन करने बहुत सक्षम हैं, फिर भी पूर्व जन्मों का स्मरण करने की शक्ति आपके पास नहीं है। तो जीवात्मा चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वो भगवान के समान शक्तिशाली नहीं हो सकता है। तो इसलिए किसी को कोई व्यक्ति कहे कि हमारे गुरु ही भगवान हैं, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। गुरु को हम भगवान के समान आदर देते हैं क्योंकि वो भगवान की प्रतिनिधित्व करते हैं। और वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? शास्त्र के वचनों को हमें समझा करके। तो गुरु से हमारा संबंध होता है उनके वचनों को सुनना, उनके वचनों को अपने जीवन में पालन करना। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु सर्वज्ञ हैं और किसके जीवन में क्या चल रहा है उन्हें सब कुछ पता हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये शक्ति केवल भगवान की है। भगवान ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जीवात्मा जब भौतिक शरीर में आता है तो संपर्क करता है तो अपनी पहचान इस शरीर से करने लगता है, लेकिन भगवान अपने दिव्य शरीर में आते हैं और कोई उनके अंदर भौतिक परिवर्तन नहीं होता। और भौतिक प्रकृति के में लगता है कि भौतिक प्रकृति में आए हुए हैं, लेकिन उससे बिल्कुल अछूते रहते हैं। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे एक बच्चे को समझाया जाए कि चंद्रमा कहाँ है, तो कहा जाए कि चंद्रमा एक नीम की डाल पेड़ की शाखा के बीच में है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चंद्रमा नीम के पेड़ की शाखा के बीच में है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि चंद्रमा की जो वास्तविक स्थिति है वो बिल्कुल अलग है और बहुत दूर है। उसी प्रकार से हमें प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि भगवान इस भौतिक जगत से संपर्क में आकर के एक मतलब संपर्क में आते हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान इससे पूरी तरह से अलग है। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। अर्जुन नित्य मुक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, फिर भी वो भगवान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी आप भगवान नहीं हो, लेकिन जब आप मुक्त हो जाओगे तो आप भगवान हो जाओगे। तो इस भगवद गीता के श्लोक से इस बात का खंडन हो जाता है। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, क्योंकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भगवान, मान लीजिए भगवान की इच्छा से भक्त भूल भी जाए भगवान को, लेकिन भगवान फिर अपने कुछ व्यवस्था करते हैं जिसके द्वारा भक्त भगवान का स्मरण कर सके। लेकिन असुर जो है वो भगवान से द्वेष करते हैं, इसलिए उनको बहुत समझाने के बावजूद, शास्त्रों को उदाहरण देने के बावजूद भी इस बात को नहीं समझ पाते। इस बारे में उदाहरण दिया करता हूं कि अगर केवल बुद्धि के द्वारा भगवान को समझ लिया जाता तो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब भगवान के भक्त बन जाना चाहिए, उनकी बुद्धि तो बहुत उन्नत होती है। लेकिन एक साधारण सी बात, भगवद गीता का सामान्य एक सिंपल सा श्लोक भी वो नहीं समझ सकते ठीक प्रकार से, क्योंकि भगवान से उनका द्वेष होता है। और हमने इस चीज को हमने इसको पढ़ा था, भगवान इसी अध्याय में बोलते हैं कि आप मेरे भक्त हो, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतद उत्तमम, आप मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इस कारण से मैं ज्ञान दे रहा हूं। तो भगवद गीता को समझने की योग्यता क्या है? योग्यता है भगवान श्री कृष्ण का प्रेमी होना चाहिए, उसको भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चल पाते, इसकी हमने विवेचना कर दी। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। तो यहाँ हमको समझ में आना चाहिए कि भगवान शाश्वत हैं, सत हैं और हम भी सत हैं, लेकिन हमारी जो सत है, हम लोग की जो चेतना है, या हम कह सकते हैं हम लोग भगवान के ऊपर निर्भर हैं। हमारा ज्ञान समय के द्वारा परिच्छिन्न हो जाता है, जब समय बीत जाता है तो हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान इस प्रकार से नहीं है। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिला है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण जब सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बिठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें समझाने का प्रयास करूंगा। आसुरिक प्रवृत्ति क्या होती है? आसुरिक प्रवृत्ति में व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर बहुत श्रद्धा रखता है। जो सोचता है कि जो उसकी इंद्रियों के द्वारा वो देख रहा है या अनुभव कर रहा है, बस केवल वही सत्य है, बस वही ज्ञान है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि हमारी भौतिक इंद्रियां पूरी तरह से अपूर्ण हैं। भक्त भी अपनी इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करता है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसके अनुसार वो सत्य के निरूपण को स्वीकार नहीं करता है। स्वीकार करने का जो आधार है वो है गुरु साधु शास्त्र एक भक्त के लिए। जैसे आप अगर पूछें कि प्रभु जी, क्या आपको ये साक्षात्कार है कि कृष्ण का जो रूप है उनसे अभिन्न है, तो मेरा जवाब यही होगा कि नहीं, मेरा ये साक्षात्कार नहीं है। ये कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, तो नहीं, ये मेरा साक्षात्कार नहीं है। लेकिन भक्ति के पथ में हम शास्त्र की बात को स्वीकार करते हैं, और जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा, तो फिर शास्त्र की आज्ञा पालन करने के द्वारा इसकी अनुभूति भी भगवत कृपा से हमको होगी। तो भले ही इस समय हमारे कान, हमारी बुद्धि को भगवान के नाम में और भगवान में अंतर महसूस हो रहा हो, लेकिन हम शास्त्र के वचनों को स्वीकार करते हैं, अभिन्नत्वम नाम नामिना, और भगवान की कृपा से एक दिन हमको ये शास्त्र, हमको ये साक्षात्कार भी होगा जिसमें हम समझ पाएंगे जो ये इस चीज को हम अपने भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो ये आप अंतर समझ पा रहे होंगे कि भक्त लोग भगवान की बात पे, शास्त्र पे श्रद्धा रखते हैं, इंद्रियों का प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों का अनुभव है उसके अनुसार वो समझने का प्रयास नहीं करते। ये कोई व्यक्ति प्रश्न करे, एक नाम से कोटि पाप, जन्मों के पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं, तो भक्त लोग इस बात पर श्रद्धा रखते हैं, इसको बुद्धि से समझने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि भगवान की जो अनंत शक्ति है वो हमारी छोटी बुद्धि नहीं समझ सकती। तो अगर ये नम्रता हमारे हृदय में है कि भगवान महान है, मैं छोटा हूं, और जो भगवान बोल रहे हैं वो सत्य है, जैसे कि अर्जुन यहाँ पर श्रद्धा रख रहे हैं, तो हम भगवद गीता की बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आगे इसमें एक और बात यहाँ पे आई है कि क्योंकि हमारा शरीर बार बार परिवर्तित होता है, और इस शरीर से हम आसक्त हो जाते हैं, माया से प्रभावित होते हैं, इसलिए हमारा ज्ञान जो है हम लोग नष्ट हो जाता है। लेकिन जब भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं, तो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में वो प्रकट होते हैं, वो हमारी तरह एक भौतिक शरीर को धारण नहीं करते हैं। तो इसके बाद भगवान अपने स्वरूप के बारे में और बताएंगे, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा।